अक्षय ने बेचैन दिल से सवाल पूछा। अब की बार आहाना की झुकी पलकें हल्की से हिली और लब हौले से फड़फड़ाए। हमारे पसंद करने ना करने से कुछ नहीं होता। अगर मम्मी पापा और भैया को रिश्ता पसंद नहीं आया तो रिश्ता नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपको जरा भी दुख नहीं होगा? अक्षय ने एक और सवाल किया और व्याकुल निगाहों से उसे देखने लगा। आहाना एक बार फिर खामोश रह गई। जाने क्यों पर आहाना की ये खामोशी चुभी थी उसे, पर कमबख्त ये भूल गया कि उसने भी तो यही कहा था अपने भाई बहन से। जब वो लड़का होकर अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता, फिर वो तो लड़की है। उसके पैरों में मर्यादा की जंजीरें जकड़ी हैं और नाजुक कंधों पर अपने परिवार की इज्जत का बोझ रखा है। वो भला ऐसा कोई फैसला कैसे ले सकती है जिससे सवाल उसके माता पिता की परवरिश और उनके दिए संस्कारों पर उठें, जिन्होंने उसे इज्जत से सर उठाकर जीना सिखाया। भला वो उनका सर किसी के सामने शर्मिंदगी से झुकाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? कुछ लम्हे उनके दरमियान खामोशी से सरक गए। आहाना पलके झुकाए खामोश बैठी रही और अक्षय खामोशी से उसे तकता रहा। फिर उसने निगाहें उसे फेरते हुए कहा, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप, ताकि आपको मेरे बारे में कोई भी राय बनाने में और अपना फैसला लेने में आसानी रहे। नहीं, हमें और कुछ नहीं पूछना। अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। इसके बाद कुछ पल ठहरने के बाद उसने आगे कहा, नीचे चलें। जी, आहाना ने तुरंत ही सर हिलाया, और जैसे ही वो उठने को हुई उसकी सैंडल में उसकी साड़ी उलझ गई, बैलेंस बिगड़ा, पर वो गिरती उससे पहले ही दो मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया और अक्षय की चिंता भरी आवाज उसके कानों से टकराई, संभाल कर आहाना। अक्षय की एक बांह उसकी कमर पर लिपटी थी तो दूसरी ने आहाना के हाथ को थामा हुआ था। उसके सीने से लगी आहाना की सांसें थम गईं, आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं, चेहरे पर कुछ रंग आकर गुजर गए, रीढ़ की हड्डी में सहरन सी हुई। इस मर्दाना स्पर्श ने उसके दिल में खलबली सी मचा दी। अक्षय के जिस्म से उठती खुशबू उसे व्याकुल कर गई। पल भर में क्या से क्या हो गया आहाना कुछ समझ ही नहीं सकी, और बिल्कुल खाली होकर इन अजीब से एहसासों में डूबने ही लगी थी कि अक्षय की आवाज़ उसके कानों से टकराई और वो चौंकते हुए होश में लौटी। हड़बड़ी में अक्षय से दूर होने को वो कसमसाई और उसने भी बड़ी ही आसानी से उसे छोड़ दिया। आहाना झट से दो कदम दूर हट गई और बेचैनी से अपनी झुकी पलकों के नीचे आंखों की पुतलियों को नचाने लगी। शर्म की लाली उसके चेहरे पर बिखरी थी और घबराहट में माथे पर पसीने की बूंदें चौचौहाने लगी थीं। जिंदगी में पहली दफा अपने भाई और पापा के अलावा किसी मर्द के इतने करीब गई थी, और दिल अब भी कुछ अलग अंदाज में धड़क रहा था। असहज हो गई थी वो, और अब अक्षय से नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जबकि अक्षय की नजरें अब भी उसके शर्म से गुलाबी मुखड़े पर ठहरी थीं, जिसके एहसास ने आहाना की घबराहट को और बढ़ा दिया था। आहाना अब भी खुद में सिमटी हुई, घबराई हुई सी खड़ी, अपने इन अनोखे एहसासों में उलझी थी, जब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर को छुआ है। उसने चौंकते हुए पैर पीछे हटाए और देखा तो अक्षय उसके कदमों में बैठा था। आहाना की आंखें हैरत से फैल गईं, जबकि अक्षय जो अपना काम कर चुका था उठकर खड़ा हुआ और हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, अब नहीं लड़खड़ाएंगे आपके कदम। आहाना का दिमाग ब्लैंक हो गया था। वो उलझन भरी नजरों से उसे यूं देखने लगी मानो उसकी बात का मतलब जानना चाहती हो। अक्षय बिन कहे ही उसके सवाल को समझ गया और इसके साथ ही उसकी मुस्कान गहरी हो गई। आपकी साड़ी आपके सैंडल में उलझ गई थी, अब ठीक है? बस चंद शब्दों में अक्षय ने उसके सवाल का जवाब दे दिया था, और मन ही मन अभी जो हुआ सब दोहराने पर आहाना को अब पूरी बात समझ आई थी कि आखिर अभी अभी हुआ क्या और अक्षय नीचे बैठकर क्या कर रहा था। आहाना के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे और वो हैरान परेशान टकटकी लगाए उसे देखने लगी। दूसरी तरफ सीढ़ियों के पास खड़ा अन्वय, जो दोनों को बुलाने आया था, छत से आती आवाजें सुनकर वहीं खड़ा हो गया। उसके पीछे आती अंतरा की नजर जब उस पर पड़ी तो उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं और चेहरे पर सख्त भाव उभर आए। अन्वय अब भी कान लगाए छत पर दोनों के बीच होती बातें सुनने की कोशिश में था, तभी एक गुस्से भरी कठोर आवाज उसके कानों से टकराई, ये जोंक हमारी दीवार से चिपक कर क्या कर रहा है तुम? आवाज सुनकर अन्वय ने चौंकते हुए नजरें घुमाई तो उसके ठीक सामने अंतरा खड़ी, कमर पर हाथ रखे गुस्से से उसे घूर रही थी। अन्वय ने उसे चुप करवाने के लिए हड़बड़ी में उसके मुंह पर उंगली रखनी चाही, पर इससे पहले कि उसकी उंगली अंतरा के लबों को स्पर्श कर पाती, अंतरा ने बीच में ही उसकी उंगली पकड़कर मोड़ दी और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बड़े ही बेशर्म किस्म के आदमी हो तुम। इतनी भी मैनर्स नहीं तुम में कि यूं छुपकर किसी की प्राइवेट बातें नहीं सुना करते। अन्वय के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। अपनी गलती का एहसास भी शिद्दत से हुआ, पर ऐसे कैसे अपनी गलती मान लेता। सो अपनी पैरवी में सफेद झूठ कढ़ा, मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ कोई किसी की बातें छुप छुप कर नहीं सुन रहा था, बल्कि उनकी बातों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसकी सफाई सुनकर अंतरा ने खा जाने वाली तीखी नजरों से उसे घूरा। बदले में अन्वय झांकने पर मजबूर हो गया। पहली गलती समझकर माफ किया, आइंदा अगर मेरे हत्थे चढ़े तो इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, अंतरा ने बड़ी ही तबीयत से उसको धमकाया, और उसके ये तेवर देखकर अन्वय के मुंह से हैरत से निकला, क्या बवाल लड़की हो यार तुम। बवाल नहीं भौकाल कहो, कानपुर का आइटम बम हूं मैं। अंतरा ने बड़ी ही अदा से अपने कुर्ते के कॉलर को झटका और खुद पर इतराने लगी। अन्वय के लब उसे तकते हुए अनजाने ही हल्के से खिंच गए। अंतरा ने जब उसे मुस्कुराते देखा तो गुस्से में खींचते हुए उसके पैर पर पैर दे मारा। अन्वय के मुंह से दर्द भरी चीख निकली, जिसे उसने बमुश्किल अंदर अंदर दबाया, वरना यहां भीड़ लग जाती। दर्द से बिलबिलाते अन्वय ने हैरत से अंतरा को देखा, जबकि अंतरा बड़ी ही बेरहमी से उसके पैर को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। अन्वय ने बेबसी से सर हिलाया और फिर अपने पैर को सहलाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। दोनों की आवाजें इतनी थी कि नीचे मौजूद लोगों ने भले ही नहीं सुनी थी, पर छत पर मौजूद दोनों लोग अलर्ट हो चुके थे। अंतरा खुद पर इतराते हुए आहना के पास पहुंची, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। जी, सारे वक्त शर्माती ही रही या वो पूछा भी जो मैंने पूछने को कहा था? आते ही अंतरा ने पहला सवाल यही किया था, पर जवाब आहना के बजाय अक्षय ने दिया था। जी, आपकी जीजी ने सवाल भी पूछे और उन्हें जवाब भी मिले हैं। क्या जवाब मिला? अंतरा आप सीधे से अक्षय से मुखातिब हुई। उसका सवाल सुनकर अक्षय ने एक नजर आहना को देखा, फिर हौले से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे जाने के बाद अपनी जीजी से पूछिएगा, वो जरूर आपको हमारा जवाब बता देंगी। अक्षय ने अपनी बात खत्म की, इतने में अन्वय भी वहां पहुंच गया। भाई अगर आपकी बातें हो गई हो तो नीचे चलें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अक्षय ने सर हिलाया और एक नजर आहना को देखते हुए जाने को पलट गया। उनके जाते ही अंतरा ने आहना से बड़ी ही उत्सुकता से सवाल किया, जीजी क्या बातें हुई आप दोनों के बीच, उन्होंने क्या जवाब दिया मेरे सवालों का, आपको वो पसंद आए? नीचे चले अंतरा, सब इंतजार कर रहे होंगे, आहना ने बात टालते हुए कहा, जिस पर अंतरा ने मुंह बनाते हुए सर हिला दिया। आहना जब अंतरा के साथ नीचे पहुंची तो नजरें अनजाने ही उस तरफ चली गईं जहां अक्षय बैठा था, और वो अब भी वहीं बैठा अपनी बहन से कुछ बात कर रहा था। बाकी सब भी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद आगंतुक जाने की तैयारी में थे। अक्षय अन्वय के साथ हाथ धोने गया हुआ था और निशांत भी उनके साथ ही था। आप हमारी जीजी को देखने आए हैं? अक्षय हाथ धो रहा था जब उसके कानों में निशांत के शब्द पड़े। उसने सर घुमाकर उसे देखा और सहमति में सर हिला दिया, हाँ।
आप हमारी जीजी को देखने क्यों आए हैं? उसका अगला सवाल सुनकर अक्षय कुछ उलझन में फंस गया और असम्मत सा बोला, इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? वही जो सच है, अंतरा पर गया था, निशांत ने सीधा सवाल किया था। अक्षय को कन्फ्यूज देखकर अन्वय ने निशांत के कंधे पर बाह लपेटते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, हमें आपकी जीजी पसंद आई इसलिए हम उन्हें देखने आए हैं। तो आप हमारी जीजी को ले जाएंगे? निशांत ने आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों भाइयों को देखा। उसका सवाल सुनकर अन्वय ने तिरछी नजरों से अक्षय को देखते हुए जवाब दिया, अभी तो नहीं, पर अगर हमारे भैया को आपकी जीजी भाग गई तो जल्दी ही बारात लेकर आएंगे और आपकी जीजी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। हमेशा के लिए? बेचारा निशांत अब घबरा गया था। अपनी जीजी के हमेशा के लिए खुद से दूर के ख्याल से ही वो बेचैन हो उठा और अक्षय ये समझ गया। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और सौम्यता से जवाब दिया, घबराओ नहीं, अभी नहीं लेकर जाएंगे आपकी जीजी को, और जब भी लेकर जाएंगे आपकी जीजी पर पहला अधिकार आपका ही रहेगा, वो आती जाती रहेंगी। निशांत ने बस सर हिला दिया, पर वो अब भी उदास था, जिससे साफ जाहिर था कि वो अपनी जीजी से बहुत प्यार करता है, जिसे अक्षय और अन्वय दोनों ने महसूस किया था। अक्षय ने निशांत को उदास देखकर आंखों ही आंखों में अन्वय को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए अन्वय ने मुस्कुराकर सर हिलाया और निशांत को अपनी बातों में उलझाकर उसका मूड ठीक करने लगा। भाई साहब, बहुत अच्छा लगा हमें आप सबसे मिलकर, हमें तो आहाना बिटिया बहुत पसंद आई। आपस में बात करके एक दो दिन में आपको अपना जवाब बता देंगे, और अगर आपके परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ा तो ये हमारा सौभाग्य होगा। मृदुभाषी अभिजीत जी ने जितेंद्र जी से विदा लेते हुए ये बातें कही थी, आपके परिवार में अगर हमारी बेटी गई तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। जितेंद्र जी ने भी अपनी इच्छा चंद शब्दों में जाहिर कर दी थी, साथ ही उनसे ठहरने की इल्तिजा भी थी। आज यही ठहर जाते आप सब तो अच्छा होता, इतना लंबा सफर करके आए, अभी तक ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं आपने, जरा रुक जाते तो रात का खाना हो जाता, आज रात यहाँ आराम करके कल सवेरे निकल जाते। बहुत बहुत आभार आपका, पर ऐसे रुकना कुछ ठीक नहीं लगता, यहाँ पास में ही हमारे दोस्त का घर है, पहले ही बात हो गई है उनसे, आज रात वहीं ठहरेंगे।
अभिजीत जी ने हिचकते हुए अपनी बात कही। जितेंद्र जी ने अब जोर देते हुए कुछ निराशा से कहा, अगर यहाँ ठहर जाते तो हमें खुशी होती, हमें भी मेजबान नवाजी का अवसर मिल जाता। अगर महादेव ने चाहा और रिश्ता जुड़ा तो आपको ये अवसर जरूर देंगे, अभी हमें इजाजत दीजिए। अभिजीत जी ने बड़ी ही विनम्रता से उनके आग्रह को ठुकरा दिया। जितेंद्र जी अब उनकी बात मान गए। जहाँ अन्वय फलक संग अक्षय ने सबसे हाथ जोड़कर इजाजत ली, वहीं जाने से पहले आहाना ने भी हाथ जोड़कर सब बड़ों को प्रणाम किया। फिर लड़के वाले विदा लेकर चले गए। जितेंद्र जी दृशांत और बाकी मर्दों संग बाहर तक आए थे। अक्षय बाकी सबके साथ जा चुका था। आहाना को कपड़े बदलने के लिए कमरे में भेज दिया गया था और बाकी लोग नीचे काम निपटाने में लगे थे।